ओम शांति। आज के इस प्रातकालीन सत्र में हमारे बीच पधारे हैं आदरणीय राजयोगी सुशील भाई जी। एक हाथ हिलाकर भाई जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप हिमाचल की धरनी देवभूमि से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1995 में आपको ये ईश्वरीय ज्ञान मिला और 1999 में आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय सेवा अर्थ मधुबन समर्पित हुए। यहाँ आने से पहले 14 वर्ष आप अमृतसर में स्थित सोनी कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन पर जॉब कर रहे थे। आप मधुबन में मुख्य रूप से सोशल विंग, मीडिया, पब्लिक रिलेशन, साइटसिंग ऑफिस में सेवाएं देते हैं। इसके साथ मधुबन में स्व पुरुषार्थी ग्रुप है, उसके आप एक्टिव मेंबर हैं और यहाँ जो रात्रि क्लास चलती है उसमें भी आप क्लासेस कराते हैं। और उसके साथ अमृत वेला जो डॉक्टर सचिन भाई जी का ग्रुप है उसमें भी आप क्लासेस कराते हो। आज का खास विषय है हलचल में अचल। पिछले कुछ वर्षों से और आने वाले वर्षों में अनेक परिस्थितियां हमारी स्थिति को हलचल में लाएंगी। अचानक कुछ भी हो सकता है। बाबा ने कहा है कि आपको अटेंशन और अलर्ट रखने की जरूरत है। अंतिम समय हमारी स्थिति अचल हो, ये हो नहीं सकता। इसके लिए बहुत काल का अभ्यास होना आवश्यक है। तो आज खास इसी विषय पर, हलचल में अचल कैसे रहे, ये भाई जी इस पर प्रकाश डालेंगे। तो सुनते हैं आदरणीय सुशील भाई जी से।
ओम शांति। देहरादून के सभी रूहानी फुलवाड़ी के महकते फूलों का स्वागत है मधुबन की धरनी में। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। ये बेहद बाबा का घर सो हम सब का घर है। तपस्या भूमि, चरित्र भूमि, जहाँ हम सभी अपने परिवर्तन की प्रक्रिया को तीव्र गति से महसूस करते हैं। जीवन में परिस्थितियां आती हैं, हलचल होती है, लेकिन उन परिस्थितियों में भी, हलचल में भी कैसे अचल अडोल रहे, इसका हर कोई ब्राह्मण आत्मा अपने अपने स्तर पर तो अनुभव ही होती ही है। सबको अनुभव है। ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं होगा जिसके जीवन में परिस्थितियां नहीं आई हों। बाबा परिस्थितियों के बारे में बहुत अलग अलग तरीके से परिभाषित करते हैं कि परिस्थितियाँ क्या है, खेल की तरह या पेपर टाइगर की तरह है। तो इस जीवन यात्रा में हलचल होती ही रहती है, लेकिन हलचल में भी हम अचल कैसे रहें, इसके ऊपर सभी का अपना अपना पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है जो आप सुनेंगे वो एक्यूरेट है। हर एक के मन में अपने अपने पुरुषार्थ की, अपने अपने फील्ड में, अपने अपने संस्कार, सबका अलग अलग होता है और सबका अलग अलग हो सकता है। लेकिन हम एक दो से ज्ञान का लेन देन करके अनुभव हमारा बढ़ जाता है। संपन्न तो बाबा के अंत में बनना ही है, लेकिन उसका अनुभव हमको अभी करना है। जैसे अचल अंत में होना है, उसका अर्थ ये नहीं कि अभी अचल नहीं है, अचल अभी होंगे तभी अंत में अचल रह सकेंगे। तो हम सब ब्राह्मण आत्माएं कितनी पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं कि जिनका हाथ स्वयं भाग्य विधाता ने पकड़ा हुआ है। किसी साधारण मनुष्य के हाथ में हमारा हाथ नहीं है। तो कुछ एक स्मृतियां हैं अगर हम निरंतर उनको बनाकर रखेंगे, क्योंकि सारा जो हमारे पुरुषार्थ का या हमारी स्थिति का आधार है वो हमारी स्मृति पर डिपेंड है, हमारी स्मृति कैसी है और उस स्मृति में सामर्थ्य कितना है। स्मृति तो होती है लेकिन उसमें ताकत कितनी है, बल कितना है। जो भी हम ज्ञान अर्जित करते हैं इस ब्राह्मण जीवन में, ज्ञान सुनना और उसको स्वरूप मिलाना दोनों अलग अलग हैं। पहली प्रक्रिया तो सुनने की है, लेकिन उसको स्वरूप मिलाने के लिए बहुत गहराई से मंथन मनन चिंतन करने की आवश्यकता होती है। बाबा हमें अनेक प्रकार के सम्मान देते हैं, टाइटल देते हैं, हमें जागरूक करते हैं, बच्चे तुम ये हो ये हो, लेकिन एक उसकी महसूसता होनी चाहिए। जैसे इस वर्ष इस यज्ञ के जो थीम है महसूसता द्वारा स्वयं का परिवर्तन, एक अंदर से दिल से आवाज आनी चाहिए कि हमारा परिवर्तन हो रहा है, वो महसूस होना चाहिए। और परिवर्तन से पहले हमें स्वयं की महसूसता, हु एम आई, मैं हूं कौन। बड़े सिंपल शब्दों में अगर हमको कोई पूछता है तो हम स्वीकार तो कर लेते हैं, मैं कौन हूं, आत्मा हूं, लेकिन उसकी अनुभूति क्या सचमुच हूं, वो शरीर के अनुभूति और आत्मा की अनुभूति दोनों अलग अलग महसूस होता है। साधना वास्तव में यही है, शरीर से अलग होने की साधना, एकमात्र ही साधना है। स्वेच्छा से आज का वरदान था ना, स्वेच्छा और दृढ़ संकल्प। स्वेच्छा से हम शरीर से डिटैच हो जाएं, हमें हमारे संस्कार हमारी आदतें हमें स्वयं को धोखा न दें, बल्कि हम स्वेच्छा से शरीर को छोड़ के चले जाएं। बाबा अंत में कहे चलो घर, तो पहुंच जाएं, यही हम सब की इच्छा भी रहती है। एक है हम इस हॉल से आराम से बाहर चले जाएं, और दूसरा है कोई हमको धक्के मार के बाहर निकाले, दोनों में से अच्छा कौन सा है? स्वेच्छा से। तो ऐसा ना हो कि हमारे कर्म ही हमको धक्के मार के बाहर निकालें, क्यों ना इससे पहले हम स्वेच्छा से ही शरीर से डिटैच हो जाएं। मुख्य प्रसार तो यही रहता है। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास। केवल संकल्पों का ही खेल है सारा, ऐसा तो है नहीं है कि आत्मा शरीर से निकल जाएगी जब हम सोचते हैं मैं अशरीरी हूं। लेकिन जो हमारी स्मृति है जो शरीर से चिपकी हुई है, अगर लंबे समय का अभ्यास है तो वो आत्मा के ऊपर एकाग्र हो जाएगी, शरीर की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। सोचा अशरीरी हूं, अगर उस स्मृति में समर्थी है और लंबे समय की प्रैक्टिस का बल है तो एक सेकंड में हम परम धाम का अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि मन के अंदर बहुत सारी ऐसी स्मृतियां भरी हुई हैं सतयुग से लेकर अभी तक, जितने भी देहधारियों के हम संपर्क में आए हैं वो सभी अंदर ही बैठे हुए हैं। उन सब की शक्लें, उन सब की स्मृतियां, उनके संस्कार, उनके स्वभाव, उनकी आदतें सभी अंदर ही हैं। सारी साधना अंदर की है, बाहर नहीं। जो भी हमने देखा हुआ है, जो भी बोला हुआ है, सोचा हुआ है, वो सब अंदर ही रिकॉर्डिंग है। विनाश नहीं होता, वो परिवर्तन होता है। विनाश का अर्थ ये होता है कि उस स्मृतियों से इतना हम दूर चले जाते हैं कि फिर वो हमको स्पर्श नहीं करती। पुरानी स्मृतियां, दैहिक स्मृतियां, देह के पदार्थों की स्मृतियां। इसलिए एक पक्का अभ्यास करने की जरूरत है अशरीरी बनने की, मैं आत्मा हूं। अब ये तो सामान्य ऐसा ज्ञान है आत्मा हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था, तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है, तुम्हें स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, मूल वतन का सारा ज्ञान है, तुम हो डैश कौन, तुम हो मास्टर भगवान। तो इसको हमने स्वीकार किया, यह हम मास्टर भगवान हैं। कितना बड़ा टाइटल है ये, मैं मास्टर भगवान हूं। एक है सुनना, लेकिन उसको महसूस करना कि भगवान ने अपनी सीट छोड़कर हमको वहां बिठा दिया, मैं मास्टर भगवान हूं। अब भगवान कभी दुखी होता है, कभी उदास होता है, निराश होता है, कभी रोता है वो नहीं। तो भगवान कैसा होता है, हमेशा वो खुश है वो। तो मैं मास्टर भगवान हूं, मैं दुखी हो सकता हूं, मैं नाराज हो सकता हूं, मैं रो सकता हूं नहीं, जैसे वो है मैं भी वैसे हूं। उसको स्वीकार करना है, हम सुन लेते स्वीकार नहीं करते हैं उसको। ये भी एक स्वयं के प्रति डिससर्विस है, भगवान के महावाक्यों को सुनना लेकिन स्वीकार नहीं करना, ये भी एक डिससर्विस है। जो सवेरे दीदी जी कह रहे थे फाउंडेशन क्या क्या है, निश्चय का फाउंडेशन, बाबा के ऊपर तो हमको निश्चय हो जाता है ये बाबा है, ज्ञान के ऊपर भी है, लेकिन स्वयं के ऊपर निश्चय की कमी है। मैं मास्टर भगवान हूं, कितना बड़ा टाइटल है। उसके तीन चार दिन बाद बाबा ने कहा तुम मास्टर सतगुरु हो, कितना बड़ा टाइटल है। अगर मैं मास्टर सतगुरु हूं तो मेरे कर्तव्य क्या है, सतगुरु क्या करता है, सबकी गति सदगति करता है, तो क्या मैं अपनी गति सदगति करने का सामर्थ्य रखता हूं, या स्वयं को मन उलझाए रखता हूं परेशानियों में, छोटी छोटी समस्याओं में। एक्सेप्ट करना है कि मैं हूं वो, एक्सेप्ट नहीं करते हम, मैं इष्ट देव इष्ट देवी हूं, सुमान लिख रहे हैं, क्या वो महसूस करते हैं कि सचमुच मैं इष्ट देवी हूं, इष्ट देव हूं। उसकी महसूसता चाहिए, रियलाइजेशन पावर। जहां भी रहते हैं, घर में भी रहते हैं, लौकिक के नाम भूल जाइए अभी, क्योंकि लौकिक के नाम अंदर में इतना गहरा चला गया हुआ है कि सारा दिन हमारी वही स्मृति है कि मैं कौन हूं, ये देह की आकृति या दूसरों की देह की आकृति। अगर मैं इष्ट देव हूं तो ये भी सभी इष्ट देवी इष्ट देवियां हैं, अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं ये भी सभी वही हैं। हमारी स्मृति में बल इसलिए भी नहीं भरता है अगर हम सुमान में स्थित हो जाते हैं मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो स्वयं की स्थिति तो अच्छी होती है, लेकिन हम दूसरों को उस नजर से नहीं देखते हैं, दूसरों को हम साधारण नजर से देखते हैं। अगर मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, सब भी मास्टर सर्वशक्तिवान है। अगर हम स्वयं उस स्मृति में रहते हैं और दूसरों को उस स्मृति से नहीं देखते तो दूसरों की कमी कमजोरियां ही दिखाई देती हैं। जो बाबा कहते हैं विशेषताओं का चश्मा पहन के रखो, दो दिन पहले स्लोगन था, तो जिस विशेषता के साथ मैं याद में बैठा हूं या सेवा में लगा हूं, क्या उन्हीं विशेषताओं के अनुरूप दूसरों के प्रति मेरे मन में वही दृष्टिकोण है, या मैं अच्छा और दूसरे ऐसे ही। बाबा हर एक बच्चे को कौन से दृष्टिकोण से देखता है, मेरा हर एक बच्चा नंबर वन बने, नंबर वाले याद प्यार देना पड़ता है, क्योंकि वो सामने देखता है कि ज्ञान को स्वीकार कर रहे हैं लेकिन अंदर में अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम केवल एक ही मुरली पढ़ ले अच्छी तरह से, एक ही मुरली अप्लाई कर लें तो भी बेड़ा पार, लेकिन मुरलियां आ रही हैं जा रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, हमारे अंदर नहीं बैठ रही हैं। ज्ञान में तो हम कह देते हैं मैं 10 साल से हूं, 20 साल से हूं, 30 साल से हूं, लेकिन ज्ञान हमारे में कब से है वो हमको जांच करने की जरूरत है। हम सोमान में मैं सूरज अधिकारी हूं, लेकिन कर्मेंद्रियां सारी हलचल है। हलचल शुरू कहां से होती है, स्वयं से होती है, क्योंकि हलचल का समुन्द्र तो अंदर में है। हलचल समाप्त होगी जब हम ज्ञान से भरपूर होंगे, अध जल गगरी शलकत जाए। ज्ञान से हमने बुद्धि रूपी पात्र को खाली रखा है तो हलचल होती है। और परिस्थितियां कौन कौन सी, जब हमको कहीं ना कहीं असफलता होती है, बिजनेस में घाटा होता है तो मन हलचल में आ जाता है, या जब कोई बीमारी आती है तब मन हलचल में आता है, क्योंकि ज्ञान को अपनी बुद्धि में अच्छी तरह से हमने भरा नहीं है। और उसका परिणाम होता है जब परिस्थिति आती है तो हम ढूंढते हैं दूसरों का सहारा, किसी दूसरे का कंधा मिल जाए या बड़ों से पूछें। तो ज्ञान की संपत्ति अर्जित करनी है, संसार में भी किसका सिक्का चलता है? जिसके पास पैसा होता है। यहां भी वो ही साहूकार है जिसके अंदर में ज्ञान का धन भरा हुआ है, ज्ञान की संपत्ति है। बाबा कहते सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? समय अनुसार बदलता रहता है, लेकिन ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। मैं लाइट हाउस माइट हाउस हूं, ये सुमान तो ले लिया, लेकिन इसका अर्थ क्या है? उसकी गुहियत हमें जाना। लाइट अर्थात क्या? कोई लाइट ऐसे नहीं कि मैं लाइट जल गई है एकदम हजारों बल्ब जल गए लाइट दिखे दूसरों को, ऐसा थोड़ा नहीं है उसका अर्थ। वो तो शब्दों का खेल है सारा। लाइट अर्थात अंडरस्टैंडिंग, समझ। जिस ज्ञान से मैं हल्का रह सकता हूं वो है लाइट। लाइट माना प्रकाश, हर चीज का स्पष्टीकरण, उसको कहते लाइट। तो वो अगर लाइट हमारे अंदर है तो हम फिर माइट का भी अनुभव करेंगे। माइट अर्थात शक्ति, ज्ञान एक शक्ति का काम करेगा। ज्ञान शक्ति तभी बनेगा जब हम उसका चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। तो स्मृति हमारी कितनी समर्थ्य है, उसमें कितना बल है, कितनी शक्ति है। ज्ञान को सुनना है लेकिन साथ साथ में उसको समझना है, उसको समाना है। खाली सुनने तक सीमित नहीं रखना है। आज के माँ बाप के सुने बुद्धि को दौड़ाओ, क्या क्या सुना आज, मीठे बच्चे क्या था, प्रश्न उत्तर क्या था, गीत क्या था, वरदान क्या था, स्लोगन क्या था, कम से कम 5-10 शब्द तो हमको याद आए। वो शब्द के आधार फिर चिंतन की, चिंतन करो। चतुर्सुजान कौन है? चिंतन करो। वो तो बाबा ने बता दिया ये है चतुर्सुजान, वो तो बाबा की महावाक्य है, वो तो बाबा ने एग्जाम्पल दिया केवल। लेकिन जब हम फील्ड में जाते हैं तो फील्ड में हम कैसे चतुर्सुजान बने वो हमको देखना है। क्योंकि कर्म क्षेत्र अर्थात कुरुक्षेत्र है, जंग छिड़ी है, और वो सारी जंग यहां है, अंदर ही अंदर द्वंद्व चलता रहता है। क्योंकि ज्ञान का स्पष्टीकरण, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान को प्रकाश की तरह हमने अप्लाई नहीं किया अपने जीवन में। तो हर एक की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हर एक ज्ञान बिंदु की अंडरस्टैंडिंग। उसको याद नहीं करना, उसको समा लेना है, ताकि समय आने पर हमारी कर्मेंद्रियां हमको धोखा न दें। लंबे समय से हम आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, दृष्टि को पवित्र बनाने में लगे हुए हैं, बोल को सुधारने में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी अगर हमारी कर्मेंद्रियां हलचल में हैं, दृष्टि चंचल हो रही है, तो आखिर कब तक संपन्न, कब तक बनेंगे? क्या अंत तक जंग ही चलती रहेगी? अब दे तो दिखाई देगी, बहन की भी दिखाई देगी, भाई की भी दिखाई देगी, लेकिन इन कर्मेंद्रियों में परमात्म पावर इतनी समा जाए कि कर्मेंद्रियां दे तो दिखाई दे लेकिन दे का आकर्षण पैदा ना हो। संसार का आकर्षण जो अंदर ही घूमता रहता है, बाहर से तो हम भले बैठे हैं मेडिटेशन में, योग में, लेकिन अंदर में क्या घूम रहा है? सारा परिवर्तन हमारे आंतरिक का, आंतरिक परिवर्तन कितना हो रहा है, अंदर का परिवर्तन, अंदर का शुद्धिकरण कितना है। बाहर से हमने ड्रेस तो अच्छी पहन ली, बैज लगा दिया, सेंटर में भी जा रहे हैं, लेकिन अंदर का संसार कितना परिवर्तन हो रहा है। स्वर्ग की अनुभूति स्वयं को अंदर में ही अनुभव करनी है, स्वर्ग में जाकर अनुभूति नहीं करनी, वहां तो अनुभूति ही नहीं है कि मैं स्वर्ग में हूं। अब भी आज के दिन इसी समय इसी सेकंड अनुभव करना है, मैं कहां हूं? स्वर्ग में। तो स्वर्ग में कौन रहता है? देवी देवता है। तो उनके लक्षण कौन से हैं? वो ऐसे बैठे होंगे, क्या होगा मेरा आज, दुर्गा देवी ऐसे होगी कहीं? अब भी देवी देवता है, अब भी। ये एक दूरी बना के रखी है हमने कि बनेंगे बाद में, नहीं, अब भी हैं। अभी संस्कार ग्रहण करने हैं, अभी इसी सेकंड। अगला श्वास तो भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाएगा। हलचल तो संसार में दिखाई दे रही है, किस तरीके से हो रही है, तो अचल अभी बनना है। देवी देवता हलचल में नहीं आते हैं, तो देवी देवता कौन है? वो स्वर्ग वाले कौन है? हम ही हैं। तो भी चेहरे कैसे होने चाहिए सभी के? खुशी वाले होने चाहिए। मंदिरों में जड़ मूर्ति है, उसका चेहरा कैसा होता है? खुशी, मुस्कुराता हुआ है। तो जड़ मूर्ति को देखकर भगत आके उससे खुश हो रहा है, और हम हैं चैतन्य मूर्तियां। तो चैतन्य मूर्तियां, देवी उदास हो, भगत सामने से आ रहा है, देवी रो रही है, भक्त मनोकामना पूर्ण करने अगले, हे देवी मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो। तो भगत भी सोचेगा, तो आंसू निकल रहे, मैं थोड़ा पहले पहुंच दूं। देवता भी सोचेगा क्या हो रहा है, हनुमान जी सोचेंगे, हनुमान जी मुंह फुला के बैठे हैं, क्या होगा ये, है ना। तो एक चुटकुला याद आ गया, बीच में वो सुना देते हैं। तो एक कन्या थी, सुना होगा पहले कहीं उन्हें, तो वो मंदिर में जाती थी, रास्ते में हनुमान जी का मंदिर आता था। तो पहले की भक्ति और अभी की भक्ति का ये डिफरेंस है। तो पहले जाकर अंदर में मंदिर में जाएंगे चप्पल जूता बाहर खोलकर, फिर वहाँ जाके मूर्ति की सफाई करेंगे, उसके पाँव में झुकेंगे, अच्छी तरह से कुछ मन्नत मांगेंगे, बड़ी श्रद्धा होती थी। तो हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते थे कि वाह मेरी कितनी पूजा हो रही है। फिर कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे जो कन्या थी जाने लगी तो थोड़ा थोड़ा रस कम होने लगा उसको, क्योंकि संसार की तरफ से उसका आकर्षण, कहीं थोड़ा नौकरी लग गई कमाई में तो ध्यान उधर जाने लगा। फिर धीरे धीरे थोड़ा मंदिर में एंटर किया, दूर से फटाफट किया और निकल के आगे बाहर। कुछ दिन ऐसे टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम तो उधर देना पड़ता है नहीं। फिर धीरे धीरे मंदिर के बाहर से ही ऐसे किया और चले गए। फिर तो उसको गाड़ी मिल गई, फिर गाड़ी पर आए तो गाड़ी में फिर ऐसे करके चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद गाड़ी खड़ी करके वहाँ खड़ी हो गई तो बोला हाय हनु कैसे हो। तो हनुमान जी को थोड़ा सा फील हो गया कि क्या जमाना आ गया, अभी कितना मान सम्मान था, अभी तो भगत लोग भी इतना नहीं पूछ रहे हैं। तो चलो तब तक भी ठीक है। फिर एक दिन कन्या वही आई है तो वो कहती है हाय हनु मुंह फुलाकर क्यों खड़े हो, क्या हुआ? ऐसे होता है ना। तो वो कौन है? हम भी तो हैं वो, कहीं भगत लोग या घर में हैं जो हम जहां हम रहते हैं, तो घर वाले हमारा चेहरा देख के ना पूछे क्या हो गया तुमको, क्या परेशानी है? वो इष्ट देवी इष्ट देवी हम ही हैं। तो हमसे ना कोई पूछे कहीं परेशानी दिख रही हो, क्या हो गया, बीमार तो नहीं हूं? तो चेहरा वो जड़ मूर्ति का हमेशा प्रसन्न रहता है, हम तो चैतन्य मूर्ति हैं। तो हमको ज्ञान से परिपूर्ण रखना है। ज्ञान एक धन है, ज्ञान एक तलवार की तरह जो हमारे सारे बंधनों को हलचल को समाप्त कर देता है, क्योंकि हलचल तो समय समय पर आती रहती है। जो गायन है निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख लाभ हानि सदा एक रस स्थित प्रज्ञ योगी, किसका यादगार है? वो हम सबका है। तो हमेशा स्थित प्रज्ञ हो, इसलिए ज्ञान का अर्जन, ज्ञान से प्यार चाहिए, ज्ञान से लगाव चाहिए, ज्ञान से आसक्ति चाहिए। ज्ञान को अच्छी तरह से समझना है। बाबा से प्यार हमारा इसलिए कम होता है क्योंकि ज्ञान से प्यार कम हो गया। मुरली हम सुन लेते हैं वहां तो अच्छा लगता है, लेकिन जैसे बाहर आते हैं तो वहां की वहां जो भक्ति मार्ग वाला जो बाबा गायन करते हैं ना, बच्चा बाहर निकला तो वहां की वहां रहती, अब भी का है वो जो हमने वहां सुना प्रैक्टिकल में हमारे जीवन में कितना आता है? उस दिन बाबा ने कहा तुम भारत की तकदीर हो, कितना बड़ा टाइटल है, भारत की तकदीर मैं, वंडरफुल है। अगर मैंने अपनी तकदीर को लकीर लगा दी, अर्थात मैं भारत की तकदीर पर लकीर लगा रहा हूं, विश्व की तकदीर पर लकीर लगा रहा हूं, तो स्वयं भगवान भाग्य विधाता मेरी तकदीर लिख रहा है, तो क्या वो तकदीर खराब लिखेगा? तूफान आएंगे लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा है, हालचल में भी वो साथ देगा, बंधा हुआ है। गीत में क्या सुना, खुदा से क्या मत कहो, तो मुश्किलें बड़ी नहीं है, खुदा बड़ा है, लेकिन हम मुश्किलों को बड़ा बना देते हैं। तो खुदा के साथ खुद को भी बड़ा समझना है। बच्चा बाप और बच्चा है, अब बाप SDM हो और बेटा कलेक्टर बन जाए तो बाप को दुख होगा कहीं? खुशी होती है। तो बाबा भी क्या कहते हैं, तुम मेरे सिर के ताज बच्चे हो, अपने से भी आगे रखता है, तुम मेरे नैनों के नूर हो। हम सुन तो लेते हैं लेकिन महसूस कहां करते हैं? तो हमेशा महसूस करना है कि जैसे हम भगवान की गोद में बैठे हैं, उसके आंचल में, उसकी छत्रछाया में। छत्रछाया को ऐसे नहीं कि ऐसे दिखेगी ऊपर से, खाली शब्दों का खेल है वो, ज्ञान की छत्रछाया ऊपर में बुद्धि में घूमती रहनी चाहिए। मन बुद्धि में ज्ञान हमारा दौड़ते ही रहना चाहिए, उस ज्ञान की शक्ति हमारी कर्मेंद्रियों में दौड़ती ही रहनी चाहिए। ज्ञान का बल, ज्ञान का प्रकाश एक एक कर्मेंद्रियों को शुद्ध करेगा। ज्ञान का बल ही योग की ताकत बनेगा। आज बाबा ने क्या कहा ताकत के बारे में, आज की मूल्य में था ताकत, क्या था? सर्वशक्तिवान से योग लगाकर तुम बच्चों को ताकत मिलती है, तुम ठहरे मास्टर सर्वशक्तिवान। तो ताकत मिलती है उसे, और मिलेगी कैसे? ज्ञान के बल से। तो ज्ञान को हमको चबाना है अच्छी तरह से, एक मिठाई की तरह अनुभव करना उसको। नवीनता चाहिए जीवन में, क्योंकि एक ही रस से हम चलते रहते हैं, उसी डर्रे पर हम मुरली सुनते हैं, उसी डर्रे अनुसार सेवा कर रहे हैं, आपस में ज्ञान की चर्चा भी, उसमें कुछ नवीनता चाहिए। ज्ञान की मिठाई हमेशा मुख में रखनी है। जैसे शिवलिंग के ऊपर जल शेक होता है, पानी की बूंद टपक रही है, इस शालिग्राम के ऊपर भी परमात्म ज्ञान का अमृत हमेशा टपकते रहना चाहिए। वहां अगर शिवलिंग के ऊपर जल अभिषेक नहीं होता तो क्या माना जाता है संसार में? बहुत क्रोध आ जाता है, आत्मा भी ऐसे विकारों से त्रस्त हो जाती है। पर अगर ज्ञान का शीतल जल ऊपर से नहीं पड़ता है तो आत्मा के अंदर सोए हुए विकार सुषुप्त अवस्था में जो अंदर ही वो युद्ध करते रहते हैं, खींचातान अंदर ही अंदर चलती रहती है। योग तो बहुत सहज है लेकिन हम उसको मुश्किल बना देते हैं। माँ बाप को बच्चा याद करता है तो उसको मुश्किल लगती है? कोई लगती है मुश्किल? कोई माला फेरता है मम्मी डैडी मम्मी डैडी मम्मी डैडी करता है? नहीं, नेचुरल है। तो हम स्वीकार करना है, वो हमारा पिता है, वो हमारी माता है, केवल सुनने तक नहीं है कि वो हमारा सर्वसंबंधी है। भक्ति में जो कहा वो अभी अनुभव करना है, भक्ति को तो कन्वर्ट करना है ज्ञान में। ज्ञान भी क्या है? भक्ति ही है, लेकिन अव्यवचारी व्यक्ति है, एक की भक्ति है, यहां शुद्ध भक्ति है, समझ के साथ भक्ति है। और भक्ति में भावना होती है, लेकिन ज्ञान के में आने के बाद थोड़ी भावना हम कम कर देते हैं। जितनी भक्ति में भावना थी उससे भावना ज्यादा बढ़नी चाहिए, भावना कम नहीं होनी चाहिए। ये ज्ञान रूखा सूखा नहीं है। बाबा कहते ज्ञान कैसा है? रसीला ज्ञान है, ये इसमें रस भरा हुआ है, रूखा सूखा ज्ञान नहीं है। मैं आत्मा हूं तो मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं वही कल पहले वाली आत्मा हूं जिसका स्वयं भगवान ने हाथ पकड़ा था, जिसके मस्तक पर स्वयं भगवान ने तिलक लगाया था, जिसके हर्ष में पल पल भगवान साथ में रहा। मैं वही आत्मा हूं, स्वीकार करना उसको। मैं विजयी आत्मा हूं लिखता जा रहा हूं, लेकिन साथ में अंदर में उसका हार का भी अनुभव कर रहे हैं। हार तो होगी लेकिन उस हार में भी विजय का अनुभव होगा, क्योंकि बाबा कहते कर्मों के हिसाब का तो आएगा, लेकिन उस हिसाब किताब में भी हम हलचल में भी अचल रहेंगे। हलचल में नहीं आएगी क्योंकि मुझे हमको पता है कि ये बीज मैंने बोया था, अब इसका फल मुझे काटना है। अब हमको समझ मिल गई है कि ये नया खाता ये पूरा हुआ, अभी नया खाता शुरू करना है, पुराना खाता पूरा हो गया। ज्ञान को ऊपर ऊपर से नहीं, ज्ञान के गहरे में जाना है। जबरदस्ती ज्ञान को आत्मा को पकड़ के उसमें डुबोना पड़ता है। आज बाबा ने कहा हठ योग राजयोग, ये मार्ग भी हठ योग से कम नहीं है, कहीं कहीं हठ योग भी करना पड़ता है। अपने आप को सजा देनी है, अमृत वेला मिस होता तो क्या सजा देनी है कि आज नाश्ता नहीं करना है ना? नहीं, ये सजा नहीं देनी है। आज मुरली 5-6 बार पढ़नी, कल बाबा ने मुरली में क्या कहा था? कम से कम 5-6 बार मुरली पढ़ो तो बुद्धि में बैठेगी। तो 5-6 बार भी पढ़ते हैं हम, जब तक व्यक्तिगत रूप से हमने मुरली नहीं पढ़ी तब तक इतना बुद्धि में एक बार सुनने से कुछ नहीं होता है। शब्द याद रहेंगे लेकिन शब्द जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी जायदाद बन जाए, अपनी मिल्कियत बन जाए, वो हमारी रगों में समा जाए, जैसे खून रगों में दौड़ रहा है ऐसे ज्ञान रगों में दौड़े, वो तब होगा जब उसको 5-6 बार पढ़ेंगे, चिंतन करें तो थोड़ा थोड़ा फिर भी उसका अर्थ समझ में आएगा। नहीं तो केवल प्रेजेंट मार्क लग जाएगी, आज की मुरली सुनी हाँ जी, योग लगाया हाँ जी, लेकिन संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे उसमें। हलचल का समुन्द्र अंदर में चलता रहेगा, छोटी सी परिस्थिति आएगी, किसने कुछ बोल दिया, सारा मन तूफान मचा देगा अंदर से। किसी ने कुछ बोल दिया, अंदर से फीलिंग आ जाएगी, किनारा कर लेंगे, मुख मोड़ लेंगे। बाबा ने कहा मैंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा, तुम मेरे से किनारा कर रहे हो? भाई बहनों ने बिगाड़ा, तुम मेरे से किनारा क्यों करते हो? बाप से प्यार है तो सबसे प्यार होगा। हम स्वयं अच्छे हैं तो सभी अच्छे लगेंगे, हम स्वयं खराब है तो सारे ही खराब लगेंगे। जितना भी कोई कितना भी विशेषताओं से संपन्न हो उसमें भी हम गलती निकाल ही देंगे, क्योंकि स्वयं को विशेषताओं से भरा ही नहीं हमने। और स्वयं भगवान कह रहे हैं तुम अच्छे से अच्छे हो, तुम सर्वगुण संपन्न हो, तो वो कह रहा है झूठ थोड़ा कह रहा है, वो सच कह रहा है ना, तो क्यों नहीं हम मानते कि हाँ मैं सर्वगुण से संपन्न हूं? कौन कौन से गुणों से संपन्न हूं उसको केवल याद नहीं करना, एक एक शब्द में इतना विस्तार हो सकता है, इतना विस्तार हो सकता है कि फुर्सत नहीं मिल सकती हमको व्यर्थ में जाने की। तो पहले सर्वगुण संपन्न याद करो, कौन कौन से गुण है वो। बाबा कहते गुणों की माला हमेशा पहन के रखो, तो कौन कौन से गुण है? 100 गुण बताओ अभी। हम गॉडली स्टूडेंट है ना, तो स्टूडेंट की तरह जिंदगी जीनी है, ये नहीं सोचना मैं बड़ा हूं छोटा हूं बुजुर्ग हूं, नहीं, गॉडली स्टूडेंट हमारे दादी जानकी जी हमारे सामने प्रैक्टिकल में प्रूफ थे, अंत तक कैसे ज्ञान निकलता था, बस ऐसे ऐसे करते रहते थे और ज्ञान मुख से निकलता रहता था। दादी जानकी जी क्या कहते थे, जब मैं शरीर छोड़ूंगी ना तो मेरा मरा हुआ शरीर भी मुख से ज्ञान ही निकलेगा। और कई बार प्रैक्टिकल में होता भी था ऐसे, दादी जी इतने बीमार हो जाते थे, डॉक्टर लोग कहते थे कि अभी तो मुश्किल लग रहा है, और दादी जी शाम को क्लास पर स्टेज पर क्लास के अपना स्टेज पर क्लास करा देते थे, डॉक्टर भी अचंभित रहते। ज्ञान सोई हुई आत्मा को जागरूक करता है, खून को गर्म कर देता है, जो खून ठंडा हो गया है, जो अंदर में काल सुस्ती सी छाई रहती है, प्रमाद छाया रहता है। ज्ञान एक आग की तरह है, ज्ञान की अग्नि हमेशा प्रज्वलित रखनी है, अपने आप हलचल की जो माया है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले अशरीरी बनने की प्रैक्टिस, दूसरा स्वयं से प्यार करना सीखना है, स्वीकार करना है आत्म सम्मान, जो बाबा ने कहा है उसको स्वीकार करना, मैं ये हूं, स्वीकार करना उसको, मैं ये हूं तो हूं, कोई मनुष्य नहीं कह रहा, वो स्वयं भगवान आकर कह रहा है, जिसको हमने भक्ति मार्ग में इतने धक्के खाए, इतना याद किया, अब उसने आकर मुझे पकड़ा है। एक आत्मा को ढूंढने के लिए कितने लोग लगे हुए थे, लाखों रुपए खर्च कर देते तब जाके ये कोई निकलता है बड़ी मुश्किल से। तो हम कितने स्किल दे, कितने मुश्किल से, कितने पुरुषार्थ के हम बाबा के मुख से निकले हुए एडॉप्टेड चिल्ड्रन हैं, तो साधारण आत्मा नहीं हम। हम तो इतने बिगड़ गए थे कि हमको सुधारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ा, कोई मनुष्य नहीं सुधार सका हमको, तो कितनी शक्ति थी हमारे में। बाबा को खतरा था ये संसार को गड़बड़ कर देंगे, पहले चला जाता हूं मैं इनको सुधारने के लिए। संसार के आधार मूर्त हैं, आधार हिल जाए तो संसार का क्या हाल होगा, इसलिए बाबा फटाफट आके हमारा हाथ पकड़ लिया। अब बहुत देर हो चुकी है, चलो नीचे संगम युग पर, आज था ना मुरली में, तो उसने हाथ पकड़ा हमारा, उसी को हमारे पर विश्वास है कि यही बच्चे हैं जो संसार की नैया को पार लगाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें स्वयं के नैया को पार लगाना है, स्वयं को संपन्न बनाना है, हर खजाने से हम संपन्न बने, सर्वगुण संपन्न, संपन्न माना पूरी संपन्नता चाहिए, परफेक्ट। मूर्ति बाबा कहते हैं खंडी, थोड़ी सी भी खंडित होती है उसकी पूजा होती है, एक भी गुण की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन कौन कौन से गुण पहले पता होना चाहिए, कौन कौन से गुण है, वो वहां 36 गुणों की लिस्ट लगी है, सबको पता भी होता है, पढ़े भी होंगे, लेकिन बुद्धि में कहां है, बच्चों की तरह याद आना चाहिए उंगलियों पर। बच्चे कैसे स्कूल में जाते हैं, कितनी लगन होती है, कितनी खुशी होती है, उमंग उत्साह होता है, उसी तरह से हमारा जीवन एक छोटे बच्चे की तरह होना चाहिए कि अभी 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 मैं स्कूल में दाखिल हुआ, आज के दिन ही, आज के दिन मुझे कुछ नया सीखना है। तो आज का होमवर्क सभी को, आज सारे 36 गुण याद करने हैं, 36 के 36 गुण याद होने चाहिए। भट्ठी अर्थात कुछ नवीनता चाहिए, योग का आधार ही ज्ञान है। ज्ञान जितना परिपक्व होगा अवस्था में होगा, आज बाबा ने परिपक्व शब्द किसके लिए बोला था मुरली में, किसके लिए बोला था, आत्मा के लिए कहा था कि जब बच्चों की अवस्था परिपक्व होती तब बाप ज्ञान आत्मा का, आत्मा बिंदी है तो सुनाते हैं, पहले नहीं। दीदी ने बताया नहीं था कि पहले पहले बाबा ने क्या बताया, अंगूर अंडे मिसल आत्मा है, फिर अंगूष्ठा मिसल है, क्योंकि अवस्था परिपक्व नहीं थी, बाद में अवस्था परिपक्व हो गई तो आत्मा बिंदी है। तो हमारी भी परिपक्व अवस्था होनी चाहिए ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में। तो 36 गुण सभी को याद करने, आज छोड़ना नहीं है, नहीं तो यार लिख लेंगे बार की बार, रही ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, चलता रहता है ऐसे, नहीं, कुछ नवीनता करो जीवन में। स्टूडेंट के हाथ में हमेशा कापी पेंसिल होनी चाहिए, तभी स्टूडेंट माने जाएंगे। हम तो देखते हैं कोई कोई माते आती है मधुबन में सेवा में, कुछ भी अनपढ़ माते, कुछ भी लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन यहां आके मुरली के सामने बैठ जाती हैं, इतनी अच्छी सुंदर हैंडराइटिंग 2 महीने के बाद हो जाती है, बात मत पूछो, उनको देख के हमारा खून खौल जाता है। ऐसे पुरुषार्थ होना चाहिए, दूसरों को देख के कुछ सीखना चाहिए। वो माते बोलते नहीं किसी को, लेकिन उनको देख के अंदर में लगता है कुछ करना चाहिए। सीखने की उम्र थोड़ी नहीं है। केरल में एक अम्मा थी 97 ईयर की, पहली क्लास में जाती थी पढ़ने के लिए, उसके अवार्ड भी मिला था प्रेसिडेंट से, 3-4 साल पहले की बात है। तो सीखने की उम्र नहीं है, ये जीवन ही सीखने का है। जब हमने सोच लिया कि मुझे सारा ज्ञान मिल गया, मैं मुरली रोज रोज सुनता हूं, वही तो बाकी है, हमारी प्रगति वही ठप हो जाएगी। आज से हमने पढ़ना चालू किया है, आज से मुझे सारे गुण याद करने हैं। कौन कौन से गुण है? वो सारे याद होने चाहिए। अथक, अनुशासन, अंतर्मुखता, आज्ञाकारी, आत्मविश्वास, ईमानदारी, उदारता, गंभीरता, रमणीकता, गुणग्राहकता, रहम दिल, यथार्थता, पवित्रता, परोपकार, नम्रता, न्यारापन, निश्चिंतता, निर्भयता, निरहंकारिता, नियमितता, स्नेह, सहयोग, सादगी, साहस, याद करने सारे। ये तो केवल 36 हैं, गुण तो बहुत सारे हैं। मुरलियों से ढूंढो, खेलो उनके साथ। खरीद के जाते हैं तो उनके साथ खेलो, कौन कौन से उनसे बाबा ने सम्मान दिए हैं, ढूंढो उनसे, नए सम्मान तैयार करो। एक है बाबा हमको सम्मान दे, तुम चतुर सुजान हो, लेकिन कुछ उसके साथ कुछ अलंकार जोड़ो। कौन सा अलंकार हो सकता है जो उस अलंकार को जोड़ने से कुछ नवीनता आएगी उसमें? मैं स्पेशल चतुर सुजान हूं। आप अपनी विशेषताओं को देखो, कौन कौन सी स्पेशलिस्ट है मेरे अंदर में, उसको साथ जोड़ो अलंकारिक भाषा में, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत है, शक्ति है शब्दों में। किसी को अगर हम गाली दे दें, शब्दी है, गाली सुन के सामने वाले का हाव भाव कैसा हो जाता है? पूरा खून गर्म हो जाता है तो शब्द ना। अब बाबा कहते तुम मास्टर भगवान हो, तो अंदर में क्या होना चाहिए? हलचल आनी चाहिए एकदम, वो सारे रोंगटे बाबा के तुम्हारे रोमांच खड़े होने चाहिए, हो जाने चाहिए। सिर के सिरे से लेकर पांव के नाखून तक तुम्हें इतनी खुशी होनी चाहिए, कितनी, कि खुशी के मारे सिर के नस पड़ जानी चाहिए। बाबा बोलते, बोला नहीं बाबा ने, बोला ना मुरली में, नहीं सुना? खुशी हमारी निजी संपत्ति है, अभी खुश नहीं होंगे तो कभी होंगे? बुद्धि को हमेशा ज्ञान से भरपूर, हलचल का एक ही कारण है, बुद्धि में ज्ञान की कमी, तभी तो हलचल आती है। कोई मार्जिन ही नहीं है तो माया अंदर में आएगी कैसे? माया का आह्वान तो हम खुद करते हैं, सवेरे से लेकर अमृत वेले से लेकर रात्रि तक दिनचर्या में कहीं ना कहीं कोई विसंगति, कोई उल्लंघन होता रहता है, छोटे छोटे उल्लंघन होते रहते हैं, और छोटी छोटी गलतियां ही बोझ का कारण बन जाती हैं। बहुत प्रकार से माया आती है, और स्वयं को ही जांच करनी है कि कहां कहां माया आ रही। हलचल आएगी, अपना कोई प्रियजन चला गया तो भी हलचल में आएंगे। अब बाबा ने आत्मा का ज्ञान दिया हुआ तो कल ही था मुरली में, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, अब सुन तो लिया, लेकिन जब अम्मा मर जाए तो पता चलता है, तब स्वयं का ही हलवा हो जाता है। वो किसके लिए बोला था अम्मा मरे बीवी मरे हलवा? वो एग्जाम्पल क्या दिया था कल? हाँ, यशोदा के लिए। हाँ, तो प्रैक्टिकल में उसकी अनुभूति करनी है तो अकेला समझना, मैं अशरीरी आत्मा हूं, पता है हम सबको अकेले अकेले जाना है, तो अज्ञान काल में ही पता था, अब भी अनुभव करना है। आत्मा, आज बताया ना, जितना कोई चीज सूक्ष्म होती है उतनी ताकतवर होती है। जितना हम स्वयं के सिंहासन पर बैठे हैं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, पावरफुल आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं, उसकी सारी शक्तियों से मैं भरी हुई हूं, निरंतर भरी हुई हूं, लेने की भी जरूरत नहीं है। उसने मुझे जन्मते ही सारे वरदान दिए हुए हैं। बाबा ने जन्मते हमारे सिर पर सारे वरदान दे दिए, हमारे सिर पर उसने हाथ रख दिया, लेकिन हम फिर भी बाबा से रोज कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान मांगेगा कभी? हम मास्टर भगवान है तो मांगने की जरूरत है? बाबा मेरी पति की बुद्धि का तारा खोल दो, या पत्नी को ठीक कर दो, जरूरत ही नहीं है। अपनी स्मृति में रहना है कि मैं इस घर में सचमुच इष्ट देव हूं, इष्ट देवी हूं, स्वीकार करना उसको, उनको अनुभव होगा। साक्षात्कार कैसे होगा अंत में? अब भी हम स्वरूप उसका अनुभव करेंगे तभी ना, तो क्या पक्का करेंगे मैं इष्ट देवी और इष्ट देव हूं? बोलो हम सब कौन है? इष्ट देव और इष्ट देवियां। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मैं स्वराज्य अधिकारी शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं पुण्य आत्मा हूं, मैं पाप आत्मा हूं। नहीं, अच्छा सुन ले, समझ गए, सुन ले, अच्छा बोला नहीं किसी ने, समझ गए। माया भी ऐसे आती बीच में, पता चला ऐसे आती माया पुरुषार्थ करते करते, मोबाइल में आती, एक क्लिक किया यहां ब्राह्मण, दूसरा क्लिक किया सीधा शूद्र में, ऐसे आती माया, डिजिटल माया। तो साधन भी कहीं हमारी साधना को खा ना जाए, डिजिटल माया भी एक हलचल का कारण है। सारे दिन में ये साधन, बाबा ने कहा तुम बच्चों के लिए साइंस के साधन हैं, ये वरदान के रूप में मिले हुए हैं, लेकिन इन साधनों का सदुपयोग करना है। अगर साधनों का दुरुपयोग करते हैं तो सबसे पहले दुख तो हमको स्वयं ही होता है कि हमने श्रीमत का उल्लंघन किया। यहां भट्ठी करने आए हैं सवेरे सवेरे अमृत वेले के बाद, यहां से बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल साइलेंस, अगर मुख से बोलते हैं इसका अर्थ ये होता है कि हमारा योग कच्चा था। यहां बैठे हैं एकदम अलर्ट, शेर की तरह खुली आंखें होनी चाहिए। शेर का बच्चा क्या होता है? शेर होता है। गीदड़ का बच्चा, कुत्ते का बच्चा, भगवान का बच्चा, तो हम सब कौन है फिर? कितना सिंपल ज्ञान है। तो भगवान के बच्चों की आंखें बंद हो सकती है? शेर पर सवारी है दुर्गा की, देवताओं की शेर पर सवारी नहीं है, देवियों की है। तो आंखें कैसे हमारी बंद हो सकती है? मन की आंखें, बुद्धि की आंखें। बाबा कहते हमेशा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला रहे, बंद ना हो। बंद किया माया की प्रवेशता, अंदर से मन से अंदर की तरफ झांकना, सारी साधना अंदर की है। मेरे मन रूपी संसार में क्या क्या दौड़ रहा है जांच करो, और उससे घबराना नहीं है। माना कि अंदर में बहुत तूफान चल रहे हैं, लेकिन तूफानों को पार करने का सामर्थ्य भी बाबा ने दिया हुआ है, उस पर भी निश्चय चाहिए, गौर करना है। काल की मुरली में था, गौर करो। क्या गौर करो? क्या गौर करो? गौर करना है। क्या गौर करो? देखो अपने आप को, तुम्हें कौन मिला है? तुम सब जानते हो। मुरली में देखेंगे अधिकतर जो सेंटेंस शुरुआत होते हैं तो बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे जानते हो, तुम बच्चे समझते हो। तो बाबा को हमारे ऊपर कितना फेथ है कि तुम जानते हो, लेकिन हम वो पढ़ने के बाद फिर भी भूल जाते हैं। तो स्वयं ही सोचना, मैं क्या क्या जानता हूं, मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, क्या मैं उनका निर्वहन, उनके जिम्मेवारी जवाबदारी पूरी मनोयोग से पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ बाबा की आज्ञा का पालन कर रहा हूं? अपने आप को तो ठग तो नहीं रहा हूं? हमें संसार में कोई धोखा नहीं देता है, हम स्वयं ही स्वयं को धोखा देते हैं, हम स्वयं ही धोखेबाज बन गए हैं। दूसरे को क्या जरूरत पड़ी है? हम स्वयं ही अपने शत्रुता मोल लेते हैं अपने आप से। इतने शत्रु पहले से बैठे हुए हैं, आज बाबा ने बोला पांच विकार, काम मां शत्रु, इनको जीतो। वो शत्रु पहले से इतने अंदर शक्तिशाली बैठे हुए हैं, और फिर मैं एक एक की कमजोरी को देख देख के यहां भरता जा रहा हूं, फलाना ऐसे कर रहा है, फलानी ऐसे कर रही है, वो सारा भर के अंदर कर दिया हमने, तो हलचल नहीं पैदा होगी तो क्या होगी? अब सवेरे सवेरे हमने ज्ञान का अमृत भराई से भरपूर किया इस पात्र को, और हमने जहर की बूंदें इकट्ठे करके डाल दी, अब क्या हो गया फिर उसमें? दूसरे के सारे अवगुण भर के हमने इस बुद्धि में डाल दिया, इसको डस्टबिन बना दिया। भगवान ने वरदान दिया था दिव्य बुद्धि का, हमने बोला नहीं, ये तो किचड़े का टोकरा है। ये है भगवान की आज्ञा की डिसर्विस, के ज्ञान की डिसर्विस। बाबा कहते तुम ड्रामा में हीरो पार्टधारी हो, लेकिन पार्ट हमारा कैसा होता है? विलेन का हो जाता है कभी कभी, स्वीकार नहीं करते हैं उसको। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, एक सेकंड में कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये मार्ग जितना ऊंचा है उतना सहज भी है, लेकिन मुश्किल हम खुद बना देते हैं। कुछ नहीं करना है, केवल स्मृति रखनी है और स्वीकार करना, महसूस करना है कि मैं अभी वो नहीं हूं, मैं मृत्यु हो चुकी है, वो पहले वाला मर चुका है, ये तो नया है एक, वो मर्जी, ये मर्जी वाला जन्म है। मुर्दा होता है हलचल में आता कभी, अच्छा लडोल है, तो ये शरीर भी क्या है? मर्जी वाला। ये आत्मा चेतन है, बस आनंद से बैठी सिंहासन पर, बस सिंहासन पर बैठ के बस अपने जीवन को साक्षी होकर देख रही है, स्वयं को भी साक्षी, दूसरे को भी, दूसरे के जीवन में इंटरफेयर नहीं करने का, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, स्वयं को हम देख नहीं रहे हैं, दूसरे के जीवन में इंटरफेयर कर रहे हैं। तुम्हारा प्रगति कब होगी, जीवन का परिवर्तन कब होगा, उसका सुख कब अनुभव करेंगे? ये एक एक सेकंड कहते बाबा कहते वर्षों के समान है, कितने सेकंड चले जाते हैं, एक दिन में कितने सेकंड होते हैं, 86,400, 86,400। अब बाबा कहते एक सेकंड वर्षों के समान है, अगर 5,000 सेकंड गवा दिए तो सारा ओम शांति, तो कितना हम टाइम का सदुपयोग नहीं करते। हलचल को तो हम खुद ही आमंत्रित कर रहे हैं, बाबा ने तो अचल भव का वरदान दिया है, लेकिन हम बाबा की जो राम की सीता बनकर आकर्षण में मृग तृष्णा की तरह, जो लक्ष्य की रेखा हमारे लक्ष्मण ने लगाई है, बाबा ने मर्यादा की श्रीमत की रेखा दी है, उससे बाहर चले जाते हैं मायावी आकर्षण, फिर अपने राम पर भी भरोसा नहीं रहता है। सीता ने लक्ष्मण को क्या कहा, मेरा राम मुसीबत में है। हम भी ऐसे हो जाते हैं, उसकी सीताएं हैं और उसकी श्रीमत का उल्लंघन कर देते हैं, फिर उसके ज्ञान पर भरोसा उठ जाता है, अपने पर उठ जाता है, जिद क्रोध कितने फिर संस्कार ऊपर आते हैं। तो कहीं ना कहीं हम मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं, हलचल का आह्वान खुद ही करते हैं। वास्तव में हम सब अचल डोल आत्मा है, तो स्वीकार करो उसको। बाबा ने कहा तुम ही अंगद हो, कल की मुरली में था, अब अंगद ने पांव रख दिया, बता दिया अगर हिला दिया तो सीता तुम्हारी, अब उसकी फिक्र किसको है, राम को होगी, हिला देगा तो उसको फिक्र है, अभी अपने आप बल भरेगा। लेकिन अंगद भी युक्ति रची उसने, क्योंकि रावण अंगद का पांव तो हिला देता, इसलिए तुमने रावण को ठोकर मार दी पहले से ही। तो बाबा कहते तुम बच्चे चतुर से जानो, हलचल में एक सेकंड नहीं होना है, अभी एक सेकंड है, अगला सेकंड उससे बाबा कहते और तीव्र, और नवीनता, और नवीनता, और नवीनता। तो छोटे बच्चे की तरह रहकर इस ज्ञान में हमको सीखना है, सीखते रहना है, ज्ञान अमृत से स्वयं को भरपूर रखना है। जीवन में जो भी परिस्थितियां एक बाबा कहते खेल की तरह आएंगी, स्वीकारना उनको, एक्सेप्टेंस करना, उनको भी स्वीकार करना, ठीक है आई है चली जाएगी। संसार में जिनको ज्ञान नहीं होता वो भी कितने खुश रहते हैं, प्रैक्टिकल में देखते हैं हम, शरीर छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन ठीक है बिजनेस में घाटा आता, पूरा बिजनेस तबाह हो जाता है, लेकिन फिर से नए शरीर से खड़े शुरू हो जाते हैं। तो बाबा ने तो हमारे अंदर कितना ज्ञान का बल भरा हुआ है। बाबा कहते हैं जितना अविनाशी ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में, अविनाशी ज्ञान का धन है, संसार का धन तुम्हारे पीछे परछाई की तरह दौड़ के आएगा, जाने की जरूरत ही नहीं है। पेट को क्या चाहिए, दो रोटी। अनावश्यक इच्छाएं तृष्णा ही हलचल पैदा करती हैं, जिनकी जरूरत ही नहीं है। घर में आप देखेंगे बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो सालों से पड़ी हैं, 10 साल से पड़ी होंगी, यूज नहीं की लेकिन रखी हुई है, निकाल दो उनको, वो हमारी एनर्जी को खा रही है, जिनकी जरूरत ही नहीं है। सन्यासियों के आसपास क्या होता था, कुछ भी नहीं होता था, उतना मन हल्का होगा, हमारे मन की एनर्जी दूसरी चीजों में ना जाती रहे। तो हलचल की स्थिति में अचल रहना, रहने की जरूरत नहीं, आप हम सभी हैं ही अचल अडोल, स्वीकार करना है। टाइम जल्दी पूरा हो गया, ओम शांति। Yeah.
सबसे।